एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सचमुच कायनात जितनी बड़ी है। हाँ, पूरे 13.8 अरब साल की कहानी।
अरे बाप रे, 13.8 अरब साल!
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड क्रिश्चियन की बहुत ही मशहूर किताब ओरिजिन स्टोरी, अ बिग हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग की।
ओरिजिन स्टोरी मतलब शुरुआत की कहानी।
बिल्कुल।
तो बिग बैंग से लेकर आज तक सब कुछ।
बिल्कुल, बिग बैंग से स्मार्टफोन तक सब कुछ एक ही कहानी में पिरोया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आप कह सकती हैं इतिहास का लेखा जोखा नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
देखिए, आज जब दुनिया इतनी उलझी हुई लगती है, बंटी हुई महसूस होती है, तब ये कहानी हमें एक साझा जनीन देती है।
एक कॉमन ग्राउंड।
हाँ, एक वैज्ञानिक नजरिए से अपने वजूद को समझने का मौका।
ये तो बहुत जरूरी बात है, मतलब हम सब कहाँ से आए, कैसे जुड़े हैं, ये समझना।
हाँ, और ये समझना कि हम अचानक से यहाँ नहीं टपके। इस किताब का मकसद है उस पूरे सफर को सामने रखना। ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं,
और शायद ये भी कि ये सब जानकर हम आगे क्या सोच सकते हैं।
बिल्कुल, और ये चर्चा उन स्रोतों पर आधारित है जो हमारे श्रोता ने हमें दिए हैं, और हमारा काम है उनमें से सबसे जरूरी, सबसे चमकदार विचारों को आपके सामने रखना।
बहुत बढ़िया, तो चलिए कहानी के जो हीरो हैं उनसे शुरू करें। डेविड क्रिश्चियन कौन है ये?
हाँ, इनकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। ये मूल रूप से तो रूस के इतिहास के विशेषज्ञ थे।
रूसी इतिहास? फिर बिग बैंग तक कैसे पहुंच गए?
वही तो, उन्हें एक सवाल बहुत परेशान करता था कि इतिहास सिर्फ लिखने पढ़ने की शुरुआत यानी कुछ हजार साल पहले से ही क्यों शुरू होता है।
सही सवाल है, असल कहानी तो बहुत पुरानी है।
बिल्कुल, खरबों साल पुरानी। और इसी सवाल ने उन्हें इतिहास की बाउंड्री से बाहर देखने पर मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रह्मांड, धरती और जीवन के इतिहास को नहीं समझेंगे तो इंसानी इतिहास तो अधूरा रह जाएगा ना।
हाँ, बात तो सही है।
तो इसी सोच से जन्म हुआ बिग हिस्ट्री का एक महा इतिहास, एक ऐसा नजरिया जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ता है।
कौन कौन से सब्जेक्ट्स?
अरे सब कुछ, खगोल विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इतिहास, सबको एक साथ लाके वो एक बड़ी समझने लायक कहानी बुनते हैं।
कमाल है। और सुनाए, बिल गेट्स भी इनके काम से बहुत प्रभावित थे।
हाँ बिल्कुल, इतने प्रभावित कि उन्होंने दुनिया भर के स्कूलों में से पहुंचाने के लिए बिग हिस्ट्री प्रोजेक्ट को फंड भी किया।
वाह, तो ये सिर्फ जानकारी जमा नहीं कर रहे बल्कि पूरा एक नया ढांचा बना रहे हैं।
एग्जैक्टली, वो इस पूरे फ्रेमवर्क के आर्किटेक्ट हैं, और उनकी खूबी ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को भी एक रोमांचक कहानी में बदल देते हैं जो किसी को भी समझ आ जाए।
ये तो बहुत बड़ा हुनर है, जटिलता को सरल बनाना।
बिल्कुल,
तो ये थे डेविड क्रिश्चियन। चलिए अब जरा उनकी किताब ओरिजिन स्टोरी में गोता लगाते हैं, ये कहती क्या है असल में।
देखिए, मूल रूप से ये किताब 13.8 अरब साल के इतिहास को सबूतों के आधार पर एक सिलसिलेवार ढंग से बताती है। आप कह सकते हैं ये हमारी आज की विज्ञान पर आधारित उत्पत्ति कथा है।
एक मॉडर्न ओरिजिन स्टोरी।
हाँ,
और इसका मेन आइडिया क्या है?
इसका जो मूल तर्क है वो बहुत सोचने वाला है। क्रिश्चियन कहते हैं कि ब्रह्मांड में कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता कोई सीधी रेखा में या अपने आप नहीं बढ़ती।
अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि चीजें बस और ज्यादा पेचीदा होती जाती हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जटिलता सिर्फ तब उभरती है जब कुछ खास गोल्डीलॉक्स कंडीशंस मौजूद हों।
गोल्डीलॉक्स कंडीशंस, ये नाम तो बड़ा क्यूट है, क्या मतलब है इसका?
हाँ, ये उस कहानी से लिया गया ना जिसमें गोल्डीलॉक्स नाम की लड़की को दलिया न बहुत गर्म चाहिए न बहुत ठंडा।
हाँ, याद आया, बस ठीक, जस्ट राइट।
बिल्कुल, तो क्रिश्चियन कहते हैं कि ब्रह्मांड में भी नई और ज्यादा जटिल चीजें जैसे तारे, ग्रह, जीवन तभी बन पाती हैं जब हालात बिल्कुल ठीक हों, न ज्यादा न कम, बस एकदम सही।
अच्छा, तो हर बड़े बदलाव के लिए वो एकदम सही माहौल जरूरी था। और किताब इसे कैसे दिखाती है? कुछ थ्रेशोल्ड्स या पड़ावों की बात है शायद?
हाँ बिल्कुल, पूरी कहानी 8 बड़े पड़ावों या थ्रेशहोल्ड्स के जरिए आगे बढ़ती है।
8 पड़ाव?
हाँ, हर थ्रेशहोल्ड एक ऐसा मोड़ है जहाँ कुछ नया और पहले से ज्यादा जटिल उभर कर आता है, लेकिन शर्त वही कि जरूरी गोल्डीलॉक्स कंडीशंस पूरी हों।
और ये कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है इन पड़ावों में?
ये बिग बैंग से शुरू होकर पहले तारों तक, फिर ग्रहों, जीवन, हम इंसानों, फिर खेती और आखिर में आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचती है।
तो मतलब ये सिर्फ क्या हुआ नहीं बताती, बल्कि कैसे और क्यों हुआ ये समझाती है, और ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है।
बिल्कुल, ये किताब उन बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। हम कहाँ से आए, इस विशाल ब्रह्मांड में क्या है, इंसान इतने अलग क्यों हैं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, हर सोचने वाले इंसान के लिए है।
सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है, तो फिर इंतजार क्यों, शुरू करें इन 8 पड़ावों का सफर।
बिल्कुल, तो पहला पड़ाव जाहिर है ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग, लगभग 13.8 अरब साल पहले।
एक महाविस्फोट।
हाँ, वहीं से समय, स्पेस, एनर्जी, मैटर और फिजिक्स के नियम अस्तित्व में आए। और शुरुआत में ब्रह्मांड इतना ज्यादा सरल था कि बस ऊर्जा और कुछ बेसिक कण, सोचिए जरा।
और यही पहली गोल्डीलॉक्स कंडीशन आ गई।
हाँ जी, ब्रह्मांड की जो शुरुआती सेटिंग्स थीं, वो अविश्वसनीय रूप से सटीक थीं, एकदम परफेक्ट। अगर गुरुत्वाकर्षण जरा सा कम या ज्यादा होता, या ऊर्जा का घनत्व थोड़ा भी अलग होता, तो आज जैसा कुछ भी नहीं बन पाता।
कमाल है, फिर क्या हुआ, लाखों साल तक अंधेरा रहा।
हाँ, लाखों साल तक अंधेरा, फिर आया दूसरा पड़ाव, पहले सितारे और आकाशगंगाएं।
तो अंधेरा कैसे छटा?
इसमें गुरुत्वाकर्षण का हाथ था, उसने धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को खींचा, उन्हें घना किया, जब दबाव और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया
तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया।
बिल्कुल, और जल उठे पहले तारे। ये थी ब्रह्मांड की पहली जटिल संरचनाएं। सोचिए, एक अंधेरे कैनवस पर रोशनी के पहले स्ट्रोक, और इन्हीं तारों के बड़े बड़े झुंडों से बनी आकाशगंगाएं।
वाह, तारों का बनना ही अपने आप में एक कहानी है, लेकिन हमारे जैसे जीवन के लिए तो भारी तत्व चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा।
बिल्कुल सही सवाल, ये कहां से आए? यहीं आता है तीसरा पड़ाव, नए रासायनिक तत्व।
हाँ, क्योंकि पहले तारे तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के थे।
सही कहा, जीवन के लिए जरूरी ये भारी तत्व बने उन शुरुआती विशालकाय तारों के कोर में, एक तरह की कॉस्मिक भट्टी में।
अच्छा,
और जब ये बड़े तारे अपनी जिंदगी पूरी करके सुपरनोवा धमाके में फटे, तो उन्होंने इन नए भारी तत्वों को पूरी आकाशगंगा में बिखेर दिया। इसे कहते हैं कॉस्मिक रिसाइकलिंग।
कॉस्मिक रिसाइकलिंग, क्या बात है!
और यहाँ गोल्डीलॉक्स कंडीशन, ऐसे विशाल तारों का बनना जो इस तरह फटकर नए तत्व फैला सकें।
तो मतलब हम सच में तारों की धूल से बने हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं।
बिल्कुल हकीकत है। इसके बाद कहानी हमारे और करीब आती है, चौथा पड़ाव, पृथ्वी और हमारा सौरमंडल।
ये कब की बात है?
ये है लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक शांत से कोने में।
और ये कैसे बना?
उन्हीं सुपरनोवा से निकले भारी तत्वों से भरी धूल और गैस के बादल से हमारा सूरज बना, और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह बने, जिनमें हमारी प्यारी पृथ्वी भी शामिल है।
और पृथ्वी पर फिर से कुछ खास गोल्डीलॉक्स कंडीशंस मिली होंगी।
हाँ बिल्कुल, बेहद खास। एक तो सूरज से सही दूरी, न इतनी पास कि पानी उबल जाए, न इतनी दूर कि बर्फ बन जाए, मतलब लिक्विड पानी के लिए एकदम सही टेम्परेचर। दूसरा, सही आकार, इतना बड़ा कि अपनी ग्रेविटी से एटमॉस्फेयर को पकड़कर रख सके।
और तीसरा?
तीसरा, एक एक्टिव जियोलॉजी, मतलब अंदर से गर्म, लगातार बदलती रहने वाली धरती, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, ये तापमान और केमिकल्स का बैलेंस बनाए रखती है।
और इन्हीं सब परफेक्ट कंडीशंस के बीच जमीन तैयार हुई अगले और शायद सबसे रहस्यमय पड़ाव के लिए।
हाँ, पांचवां पड़ाव, जीवन का उद्भव,
लाइफ। ये कैसे शुरू हुई?
ये तो अब भी मिस्ट्री है ना।
हाँ, ये अब भी विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है कि नॉन लिविंग केमिकल से लाइफ कैसे आई। लेकिन हम ये जानते हैं कि जीवन के लिए तीन चीजें जरूरी थीं।
क्या क्या?
एक, एनर्जी का सोर्स, सूरज, दो, जरूरी केमिकल तत्व जो तारों से मिले थे, और तीन, एक तरल माध्यम जैसे पानी जो पृथ्वी पर था। और ये सब कहाँ मिला?
शायद समुद्र की गहराइयों में गर्म पानी के स्रोतों के पास, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। हो सकता है वहीं पहली सिंपल सेल्स बनी।
और फिर डार्विन का सिद्धांत काम करने लगा, नेचुरल सिलेक्शन।
एग्जैक्टली, प्राकृतिक चयन ने विविधता बढ़ाई, जटिलता बढ़ाई, और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब कुछ जीवों ने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया।
फोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की रोशनी से खाना बनाना।
हाँ, इस प्रोसेस ने हमारे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया, और इसी ऑक्सीजन ने आगे चलकर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता बनाया।
तो जीवन आ गया, फैला, बदला, लेकिन कहानी हम इंसानों तक कैसे पहुंची? ऐसी क्या खास बात हुई?
यही आता है छठा पड़ाव, कलेक्टिव लर्निंग। ये क्रिश्चियन के सबसे अहम आइडियाज में से एक है।
कलेक्टिव लर्निंग मतलब मिलकर सीखना।
हाँ, लगभग 2 से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस यानी हम इंसान आए, तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया। देखिए, बाकी जानवर भी सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन इंसान अपनी कॉम्प्लेक्स भाषा की मदद से बहुत डिटेल्ड जानकारी एक दूसरे को बता सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उस जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी जमा कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये है हमारी सुपर पावर, भाषा और ज्ञान जमा करना।
हाँ, यही है वो सीक्रेट सॉस। ये जेनेटिक बदलावों से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से हमें बदलने और माहौल के हिसाब से ढलने की ताकत देता है।
और इसी सामूहिक शिक्षा ने हमें अगले बड़े पड़ाव की तरफ धकेला होगा, 7वां पड़ाव, कृषि, खेती की शुरुआत।
सही पकड़ा। ये हुआ लगभग 10-12 हजार साल पहले। हमारे इतिहास का 95% हिस्सा हमने शिकारी संग्राहक की तरह बिताया। फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने कुछ पौधों और जानवरों को पालतू बनाना सीखा।
यहीं से खेती शुरू हुई।
हाँ, अब एक ही जगह पर रहकर पहले से कहीं ज्यादा भोजन उगाया जा सकता था। नतीजा हुआ फूड सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज।
और इस एक्स्ट्रा अनाज ने तो सब कुछ बदल दिया होगा।
बिल्कुल, लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, बस्तियां बनी, आबादी तेजी से बढ़ी, गांव बने, फिर शहर, फिर राज्य और साम्राज्य। स्पेशलाइजेशन बढ़ा, कोई किसान, कोई कारीगर, कोई शासक।
लेकिन शायद नई समस्याएं भी आई होंगी।
हाँ बिल्कुल आई, जमीन और संसाधनों के लिए झगड़े, समाज में ऊंच नीच, और क्योंकि लोग एक साथ रहने लगे थे, बीमारियां भी तेजी से फैली, महामारियां।
जटिलता अपने साथ नई चुनौतियां लाती है, और फिर हम पहुंचते हैं सबसे नए, सबसे तेज पड़ाव पर।
हाँ, 8वां थ्रेशोल्ड, आधुनिक क्रांति। ये पिछले करीब 500 सालों की कहानी है।
इसमें क्या हुआ?
इस दौर में दुनिया के अलग अलग हिस्से, अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब आपस में जुड़ गए। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत,
विचारों का, चीजों का, सबका आदान प्रदान।
हाँ, और यहां तक कि बीमारियों का भी। इससे सामूहिक शिक्षा की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस क्रांति का जो असली इंजन बना, वो था एक नया जबरदस्त ऊर्जा स्रोत,
जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, गैस।
बिल्कुल, ये करोड़ों सालों से धरती के नीचे जमा हुई सौर ऊर्जा थी। इसे निकालना और इस्तेमाल करना सीखने के बाद तो इंसान के हाथ मानो अलादीन का चिराग लग गया।
अच्छा,
इस अपार ऊर्जा ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी ने रॉकेट की तरह तरक्की की, आबादी आसमान छूने लगी, और आज की ये आपस में जुड़ी हुई तेज रफ्तार दुनिया बनी।
तो ये थी 8 पड़ावों की कहानी, बिग बैंग से आज तक। अगर हम अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखें, तो कुछ बड़े सबक या थीम्स नजर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, पहला तो साफ है, बढ़ती जटिलता की कहानी। ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है, इसकी एक कहानी है। सिंपल चीजों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं, लेकिन यह लगातार नहीं होता, अचानक पड़ावों में, थ्रेशहोल्ड्स पर होता है।
और दूसरा जो मुझे ज्यादा चौंकाता है, वो है गोल्डीलॉक्स कंडीशंस का महत्व।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
मतलब जटिलता कितनी नाजुक है, हर मोड़ पर सब कुछ ठीक ठाक होना जरूरी था। जरा सा भी इधर उधर होता
तो शायद कहानी कुछ और होती या होती ही नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे समाज, हमारी सभ्यता को बनाए रखने वाली परिस्थितियां भी कितनी नाजुक हो सकती हैं।
तीसरा बड़ा सबक है ऊर्जा के प्रवाह की भूमिका। कॉम्प्लेक्सिटी को बनाने और बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए।
बिल्कुल, तारों ने न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल की, जीवन ने सूरज की रोशनी, और हमारी मॉडर्न सभ्यता फॉसिल फ्यूल्स पर खड़ी हुई।
इतिहास में जब भी इंसान ने ऊर्जा के नए स्रोत को साधा है, बड़े बदलाव आए हैं। जैसे आजकल हम भारत में भी देख रहे हैं, सोलर एनर्जी पर कितना जोर है। ये भी तो ऊर्जा के स्रोत में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है ना? इसके असर भी बहुत गहरे होंगे।
हाँ बिल्कुल। चौथा, जैसा हमने पहले भी कहा, सामूहिक शिक्षा, कलेक्टिव लर्निंग ही इंसान की असली पहचान है। यही वो सुपर पावर है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती है।
जानकारी शेयर करने और जमा करने की क्षमता, और आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया तो इसी कलेक्टिव लर्निंग का एक नया, बहुत तेज रूप है, जिसके अपने फायदे और खतरे हैं जो हम रोज देखते सुनते हैं।
सही बात। 5वां है ज्ञान की एकता। हम भले ही पढ़ाई के लिए साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स को अलग अलग बांट दें, पर असल में तो सब कुछ जुड़ा हुआ है।
ब्रह्मांड की कहानी समझने के लिए फिजिक्स भी चाहिए, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, और इतिहास भी। ये तो हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं। कोई भी बड़ी समस्या सुलझाने के लिए, चाहे वो घर चलाने की हो या ऑफिस की, हमें अलग अलग तरह की सोच और जानकारी को जोड़ना ही पड़ता है।
बिल्कुल। छठा है पैमाने, स्केल का नजरिया। ये किताब हमें मजबूर करती है कि हम समय और स्थान के बहुत बड़े पैमाने पर सोचें, अरबों साल, अरबों प्रकाश वर्ष।
हाँ, इस बड़ी पिक्चर में हमारी अपनी चिंताएं, यहाँ तक कि हमारी उपलब्धियां भी थोड़ी अलग नजर आने लगती हैं, थोड़ी विनम्रता आती है ना? और हैरानी भी होती है।
बिल्कुल। और सातवां, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एंथ्रोपोसीन और हमारी जिम्मेदारी।
एंथ्रोपोसीन मतलब इंसानों का युग।
हाँ, हमारी सफलता ने हमें इस ग्रह पर बदलाव लाने वाली सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। वैज्ञानिक अब कहते हैं कि हम एक नए भूवैज्ञानिक युग एंथ्रोपोसीन में जी रहे हैं, जहां इंसान ही धरती के सिस्टम्स को बदल रहा है, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ।
तो इस अभूतपूर्व शक्ति के साथ अभूतपूर्व जिम्मेदारी भी आती है।
एग्जैक्टली।
वाकई इस किताब में ऐसे कई विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। कुछ खास बातें जो हमें बहुत दमदार लगीं, उन्हें शेयर करें।
हाँ, क्यों नहीं। जैसे पहला, ये विचार, इंसानों को अपनी उत्पत्ति की कहानी जानने की गहरी प्यास होती है। आज विज्ञान हमें वो कहानी दे सकता है जो सबसे सटीक हो, सबूतों पर आधारित हो और जिसे हम सब साझा कर सकें।
ये किताब के मिशन को बताता है, एक मॉडर्न साइंटिफिक ओरिजिन स्टोरी जो सबको जोड़ सके, धर्म या मिथकों से अलग।
बिल्कुल। दूसरा ये कि ब्रह्मांड का इतिहास बढ़ती जटिलता का इतिहास है, लेकिन ये जटिलता हवा में नहीं बनती, ये सिर्फ गोल्डीलॉक्स कंडीशंस में ही मुमकिन होती है जब हालात एकदम सही हों।
ये उन दो मेन आइडियाज, थ्रेशहोल्ड और गोल्डीलॉक्स को जोड़ता है और याद दिलाता है कि हमारा होना कितना नाजुक है।
हाँ। तीसरा, इंसानों को जो चीज सचमुच बाकी सबसे अलग बनाती है वो है सामूहिक शिक्षा की ताकत। भाषा के जरिए ज्ञान को साझा करना और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमा करते जाना।
ये इंसान की अनोखी पहचान पे जोर देता है। हमारी असली ताकत हमारी इन्फॉर्मेशन और कल्चर में है।
सही कहा। और चौथा, जो एक तरह से चेतावनी भी है, धरती के 4.5 अरब साल के इतिहास में पहली बार एक अकेली प्रजाति पूरे बायोस्फीयर में बदलाव लाने वाली मुख्य ताकत बन गई है। हम एंथ्रोपोसीन युग में जी रहे हैं। हमारी अपार शक्ति हमें अपार जिम्मेदारी सौंपती है।
ये किताब की आखिर का सार है। हम अपनी कहानी के शिखर पर हैं, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला पन्ना कैसा होगा, ये लिखना अब हमारे हाथ में है।
डरावना भी है थोड़ा।
है तो। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत बड़ी और दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या करे, इन विचारों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। पहला शायद है एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, यानी ब्रह्मांडीय नजरिया अपनाना।
मतलब
जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और समय कितना लंबा, तो अपनी रोज की परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं।
हाँ, शायद ऑफिस की टेंशन या ट्रैफिक जैम उतना बड़ा न लगे। ये हमें अपने होने के लिए थोड़ी कृतज्ञता भी सिखा सकता है, छोटी छोटी बातों पर कम चिंता करना।
बिल्कुल। दूसरा, अलग अलग ज्ञान को जोड़ने की सोच अपनाना। ये समझना कि दुनिया अलग अलग बॉक्सों में बटी हुई नहीं है।
अच्छा।
चाहे आप कोई छोटा बिजनेस चला रहे हों, या अपने मोहल्ले की कोई समस्या सुलझा रहे हों, या बच्चों को कुछ सिखा रहे हों, अलग अलग नजरियों और जानकारी को मिलाने से अक्सर बेहतर और क्रिएटिव समाधान निकलते हैं।
तीसरा, एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनना।
हाँ, आज की बड़ी चुनौतियां जैसे क्लाइमेट चेंज या बढ़ती असमानता,
जी,
ये अचानक नहीं आई। इनकी जड़ें इतिहास में घिरी हैं।
बिग हिस्ट्री हमें इन्हें बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करती है, ताकि हम सिर्फ आज की नहीं बल्कि ज्यादा गहरी और समझदारी भरी बहस कर सकें और फैसले ले सकें।
चौथा, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हम अक्सर आज या कल के बारे में सोचते हैं।
हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगले इलेक्शन तक।
सही कहा। बिग हिस्ट्री हमें हजारों, लाखों या तक कि अरबों सालों के पैमाने पर सोचने को उकसाती है। जाहिर है हम उतना लंबा नहीं सोच सकते, लेकिन ये हमें अपने आज के कामों के दूरगामी नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
जैसे
हम जो चीजें खरीदते हैं उनका पर्यावरण पर क्या असर होगा, हम कैसी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं।
ये सोचने वाली बात है। और पांचवां
शायद सबसे खूबसूरत बात, जुड़ाव की भावना को महसूस करना,
कनेक्शन।
हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि हम सब इंसान, जानवर, पेड़, पहाड़, यहाँ तक कि दूर टिमटिमाते तारे भी एक ही विशाल कहानी का हिस्सा हैं। हम सब एक ही बिग बैंग से निकले हैं, एक ही तरह के एटम से बने हैं।
ये एहसास शायद हमें एक दूसरे के प्रति और इस ग्रह के प्रति ज्यादा हमदर्दी और जिम्मेदारी महसूस करा सकता है।
बिल्कुल,
वाकई ये एक ऐसी कहानी है जो नजरिया बदल देती है। मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो यही थी कि कैसे एकदम सिंपल शुरुआत से, सिर्फ ऊर्जा और कुछ कणों से, इतनी अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स चीजें बन गई, जैसे जीवन, चेतना, हमारा समाज, और ये सब कुछ कितनी नाजुक गोल्डीलॉक्स शर्तों पर टिका था। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है।
हाँ बिल्कुल, और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो है सामूहिक शिक्षा का आइडिया और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी। क्रिस्टिन कहते हैं कि हम इतिहास की पहली प्रजाति हैं जो अपनी कहानी को, अपने विकास को समझ सकती है।
और अगर हम समझ सकते हैं
तो शायद हम उसे दिशा भी दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और थोड़ी डराने वाली भी। ये किताब एक रिमाइंडर है कि हम एक बहुत बड़ी लगातार चल रही कहानी के किरदार हैं। अगला अध्याय क्या होगा ये तय करने में हमारी भूमिका बहुत अहम है।
ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान अपनी इस अनोखी सामूहिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आखिरकार एक टिकाऊ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर पाएगा या नहीं। कहानी जारी है।
हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।